Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसी प्रकार से विज्ञानमय कोष भी मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञानमय कोष कभी तो उपलब्ध होता है, अनुभव में आता रहता है, काम करता रहता है, और कभी कभी वह लुप्त हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानमय कोष का अभाव सिद्ध हो जाता है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कभी मेरा अस्तित्व रहे और कभी मेरा अस्तित्व न रहे। तो मैं आनंदमय कोष भी नहीं हूं, क्योंकि आनंदमय कोष भी अनित्य है। इस प्रकार से जब पंचकोश विवेक की प्रक्रिया से जब आप अपनी उपाधि रूप ये पांचों कोशों का बाध कर देते हैं, तो यही पुरंजन नंगा होना है। पंचकोश का बाध कर सको तो क्या हो गया, आप पुरंजन, आप नंगे हो गए कि नहीं? अब जब ये पांचों कोशों से आपने अपने को अलग कर लिया तो आप नंगे हो गए। नंगे हो गए तो फिर पुरंजनी के साथ आपका क्या संबंध रहेगा? पुरंजनी अपने आप भाग जाएगी, छोड़ छाड़ कर भाग जाएगी। ये वेदांत का ये प्रक्रिया है। पुरंजन उपाख्यान में पुरंजनी ने यह शर्त रखा है कि मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक ये मेरा जो कार्य रूप अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, इन सबको तुम धारण करते रहोगे, तब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम इनका परित्याग कर दोगे तब फिर मैं भी तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। ये देख लो, पुरंजनी ने जो पुरंजन के सामने शर्त रखा कि जब तक तुम कपड़े में रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और यदि तुम जिस दिन नंगे हो जाओगे उस दिन मैं परित्याग कर दूंगी। नंगे ही तो हो गए तुम, पंचकोश विवेक कर लिया तो अब तुम्हारी उपाधि नहीं रही, तो तुम्हारे पास कपड़े कहां रहे? तुम नंगे ही तो हो गए। नंगे माने जैसे थे वैसे ही हो गए। ये सब बात अजो हे को जुषमाण अनुसेते। अज तो ये भी अज ही है, जीवात्मा भी अज है, जन्म तो इसका भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका खुद का जन्म न होता हुआ भी, जन्म न हुए हुए वह त्रिगुणात्मिका बहुरूपा अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करने की क्षमता वाली जो अजा है, बकरी है, प्रकृति है या माया है, उसके साथ अनुसेते आसक्त हो जाने के कारण वह बद्ध हुआ है, और उसी आसक्ति से इसको बहुत दुख हुआ है। लेकिन तीसरा जो आज है, जिसको परमात्मा कहो, वेदांत के दृष्टि से इसी को विज्ञानात्मा कहेंगे। यानी उसने जब ने विवेक करके विचार करके सब परित्याग कर दिया है, इसी को वेदांत के दृष्टि से त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी कह सकते हो। देखो, त्वम पद का वाच्यार्थ भी अज है, तुम पद का लक्ष्यार्थ भी अज है, दोनों अज हैं। लेकिन तुम पद का वाच्यार्थ अज होता हुआ भी तमाम उपाधियों के साथ वह आसक्त होने के कारण वह दुखी है, और तुम पद का लक्ष्यार्थ इन सारे उपाधियों का परित्याग कर देने के कारण वह सुखी है। तो यही कहते हैं, जितने ये संसार और सांसारिक पदार्थों के साथ हमारा संबंध जुड़ता जाएगा उतने ही हम सोचते हैं कि हम सुखी होते जाएंगे, और हमारा अनुभव बताता जाता है कि उतने ही हमको दुख बढ़ता जाता है, मुसीबत बढ़ती जाती है, समस्या बढ़ता जाता है। तो सबसे समझदारी तो यही है कि इनसे कोई संबंध न रखा जाए। संबंध न रखा जाए का मतलब यह नहीं है कि उस शरीर को ही नष्ट कर दिया जाए, और शरीर को नष्ट कर देंगे तो संबंध अपने आप हट जाएगा। ये विचार से अविचार से जुड़ा हुआ जो संबंध है उसको छोड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा। अविचार से प्राप्त वस्तु विचार के द्वारा हटता है। ये सारी संबंध तो अविचार से ही प्राप्त हुआ है। क्या हमने शरीर के साथ संबंध जो रखा है, ये जीवात्मा ने शरीर के साथ तो तादात्म्य जो रखी है, क्या विचार पूर्वक सोच समझ कर रखा है? मैं शरीर के साथ तादात्म्य भाव को रखूंगा तो इसके रखने से मुझे ये लाभ होगा, ये प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा करूंगा, मैं इतने दिन तक इसके साथ तादात्म्य रखूंगा, इतने दिन के बाद इसको छोड़ूंगा, जैसे कि आप एग्रीमेंट करते हो, क्या ये विचार पूर्वक इस शरीर के साथ तादात्म्य रखी है आपने? ये तो बिना विचारे रखा है। कोई व्यक्ति यदि रस्सी में सर्प देखता है तो क्या विचार करके देखता है कि इस रस्सी में इतने समय तक सर्प देखूंगा, इतने समय के बाद मैं सर्प देखना बंद करूंगा? विचार करके देखता है, बिना विचारे देखता है, इसके मतलब क्या हुआ? विचार नहीं किया, इसलिए उसको सारे भय बन गए, डर और भय की समस्या हो गई। और इन सबसे निवृत्ति होने के लिए वह जब विचार करता है तब सभी समस्या से समाधान, वो सारा सर्प निवृत्त हो जाता है। तो अविचार से जो प्राप्त वस्तु है वह विचार के बाद हट जाता है। इसी प्रकार से इन उपाधियों से जो तादात्म्यता है वह हमारा प्रज्ञानात्मा का, विज्ञानात्मा का अविचार से प्राप्त हुआ हुआ है। जब बैठकर आप विचार करने लगोगे तब इस शरीर के पैदा न होने पर भी मेरा स्वरूप था, क्योंकि मैं अज हूं, इसका मतलब मेरा स्वरूप था, और शरीर के नष्ट होने पर भी मेरा स्वरूप यथावत रहेगा, इसलिए मेरे होने और न होने में इस शरीर का कोई संबंध नहीं है। हम कभी कभी इस प्रसंग को बता देते हैं, जो विचार नहीं कर सकते उनको कितनी बड़ी समस्या आ जाती है। हम दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे एक मंदिर में, तो वहां उस मंदिर की व्यवस्था के लिए एक मुनीम रखा था, बड़े सीधे साधे थे बेचारे। तो आते थे, हमने कई बार दृष्टांत दिया है ये, तो आते थे, पहले आते ही मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे, दर्शन कर लेने के बाद वो टीका प्रसाद लेते थे और पुजारी से पंचामृत लेते थे। एक बार हम वहीं घूम रहे थे, उसी समय आए और पुजारी ने उनको वो पंचामृत देने लगा, तो देते समय उसने एक मंत्र पढ़ ली, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिवपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये मंत्र पढ़ते हुए उनको हाथ में जल दिया, उन्होंने उस जल को सिर में रखा, खाया। तो हमने मजाक में पूछ लिया, मुनिम जी ये जो आपको हाथ में पुजारी जी जल दे रहे थे, उस समय पुजारी जी ने कोई मंत्र पढ़ा था, वो मंत्र में पुजारी जी ने क्या कहा है आपको मालूम है? उस मंत्र का अर्थ क्या है आपको मालूम है? बोले नहीं महाराज, पता नहीं पुजारी जी ने संस्कृत में पढ़ा है, हम संस्कृत तो जानते नहीं है, मंदिर के आगे बैठे पुजारी है, कुछ अच्छे ही बात कहा होगा। पुजारी तो अच्छी बात कहेंगे, पंडित जी तो अच्छी बात कहेंगे मंदिर के आगे। मैंने कहा इन्होंने कोई अच्छी बात नहीं कही है, तुम्हें गाली दिया है। बोले किस बात को पुजारी, हमको क्यों गाली देंगे भाई? बोले पुजारी जी ने जो सामान खरीद के लाया था मंदिर के लिए, 15 दिन हो गया वो बिल तुमको दिया, उसका पैसा तुमने नहीं दिया, इसलिए आज तुमको गाली कर रहा है, वो गाली दे रहा है। तब हाथ जोड़ के कह रहे पुजारी जी आज जरूर दूंगा, जबकि उसका कोई संबंध नहीं था, उससे उसका कोई संबंध नहीं था, मैंने ऐसे कह दिया था। तो कहे आज जरूर दूंगा पुजारी जी, आप चिंता न करो, आओ अब भी आ जाओ, अब भी लेने आओ, कहने लगे वो। तो पुजारी कहने लगा कि नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसे गाली नहीं दिया है। तो मुनिम कहते हमारे तरफ, पुजारी कहते हमने गाली नहीं दिया, आप कहते पुजारी ने गाली दिया। देखो भाई, जो भाषा समझ में नहीं आती है, गाली दिया कि स्तुति किया, क्या मतलब हुआ? और यदि सही रूप में इसका क्या अर्थ है, वो पुजारी जी ने क्या कहा, ये जानना चाहते हो पहले तो मैंने मजाक किया है, इसका असली अर्थ जानना चाहते हो, क्योंकि रोज पुजारी जी यही श्लोक पढ़ते हैं। आज एक बार अर्थ यदि आपको समझ में आ जाएगी तब तो फिर हमेशा ही अर्थ समझ में आ जाएगा। बोले अच्छा महाराज आप अर्थ बता दीजिए। तो हमने कहा देखो पुजारी जी ये कह रहे हैं अकाल मृत्यु हरणम, जो ये भगवान शिव की अर्चना से निकला हुआ पंचामृत है शिवपाद उदकम पीतवा, इस पंचामृत का जो एक बार भी पान कर लेता है, एक बार भी आचमन कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, तब फिर उस वह व्यक्ति अकाल मृत्यु हरणम, भगवान शिव उसकी अकाल मृत्यु को हर देते हैं, यानी उसकी कभी भी फिर अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। फिर पूछने लग गए महाराज ये अकाल मृत्यु क्या है, तो उनको बताना पड़ेगा ना संस्कृत भाषा क्या है अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु का अर्थ क्या हुआ महाराज, बनेगा अकाल मृत्यु का अर्थ है कि किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये नहीं कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं होगी, किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट से अचानक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे आप घर से यहां स्कूटर में आए कि नहीं, बोले हां स्कूटर में आए, तो तुमने कभी कभी न्यूज पेपर में पढ़ा कि नहीं कि स्कूटर दुर्घटना हो गया और फलाना व्यक्ति मर गया, ऐसा पढ़ा है कि नहीं, बोले ये तो दिल्ली है बहुत दुर्घटनाएं होती रहती है मरते रहते हैं। बोले पुजारी जी ये कह रहे हैं कि तुमने ये शिवपाद उदक पी ली है, इसका मतलब आप निश्चिंत होकर रही है कि आपके कभी भी इस प्रकार के मोटर आदि वाहन के दुर्घटना से आपकी मृत्यु नहीं होगी। बोले ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, बात समझ में आ गया ना, कहते बहुत अच्छा कहते हैं ये। दूसरी बात सुन लो फिर, सर्वव्याधि विनाशनम, उसका अर्थ क्या हुआ महाराज, बोले जो ये शिवजी का चरण उदक पान कर लेगा उसके शरीर में आदि और व्याधियां जो है सब कुछ खत्म हो जाएंगे। माने व्याधि माने क्या है महाराज, व्याधि माने रोग। तो आपको कभी बुखार आता है कि नहीं, बोले आता है, आपके बाद बुखार नहीं आएगा पुजारी कह रहा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, आदि व्याधि सब नष्ट हो जाए, ये भी बहुत अच्छा कहते हैं। हमने कहा तीसरी बात भी कह रहे हैं साथ ही साथ, वो भी समझ लो। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, ये परमात्मा के चरणामृत का यदि कोई पान कर लेता है तो फिर उसको दोबारे शरीर ग्रहण करना नहीं पड़ेगा, अर्थात फिर वह इस संसार में दोबारे पैदा होकर नहीं आएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो थोड़ी देर की बात कहने महाराज ये तो सब गलत हो गया भाई। बोले क्यों, यदि हम मरने के बाद फिर जन्म नहीं होगा तो फिर हम कहां जाएंगे, क्या रहेंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनको तो बहुत समस्या हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, पुनर्जन्म न विद्यते इस रहस्य को न जानने के कारण उनको कठिनाई हुई कि नहीं, समस्या हुई कि नहीं है? अब ऐसे व्यक्ति को तुम मरोगे तो फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा कहेंगे, तो वो माने ये शिवपाद उदक भगवान का प्रसाद खा लो फिर तुम्हारा जन्म दोबारे मरने के बाद तुम्हारा दोबारे जन्म नहीं होगा ये कहेंगे, तो क्या वो व्यक्ति शिवजी का प्रसाद खा पाएगा है? जो हमेशा यही आसक्ति में बैठा है कि पुनर्जन्म होवे, जन्म होवे, शरीर प्राप्त हो, संसार का भोग करें, खाएं, पिए, मौज करें, जो इस आसक्ति में बैठा हुआ है, तो उसको ये कह दिया जाए कि तुमको ये प्रसाद खाने के बाद तुम फिर दोबारे जन्मोगे नहीं, पैदा नहीं होगे, तो उसको वो प्रसाद खाने में डर लगेगा कि नहीं, भयभीत होगा कि नहीं, यही तो बात है। जिसको खाने से सारे डर और भय निवृत्त हो जाता है, न समझने के कारण वह उसी से भयभीत हो रहा है। अष्टावक्र महर्षि कहते राजा जनक को कि आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, हर व्यक्ति दुख कष्ट विषाद इन सब से मुक्त होना चाहता है, लेकिन उनकी मुक्ति से मुक्त होने के लिए जो उपाय करनी चाहिए तो उपाय जब करने लगते हैं तो उससे वह खुद डर जाता है। आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका, मोक्ष चाहता है लेकिन मोक्ष से डरता है, मुक्ति चाहता है लेकिन शरीर अब दोबारे प्राप्त नहीं होगा ये कहेंगे तो वो डरता है। अरे शरीर प्राप्त नहीं होगा तो फिर हम कहां रहेंगे? मैंने कहा तुम रहोगे, शरीर नहीं होगा तो भी रहेंगे। बोले शरीर नहीं होगा तो हम कहां रहेंगे महाराज? बोले तुम शरीर नहीं होगा तो परमात्मा ही हो जाओगे, परमात्मा में रहोगे, जीव ही नहीं रहोगे। शरीर ये पांच कोष रहेंगे तभी ना तुम जीव कहलाओगे, पांच ही कोष नहीं रहेंगे, अन्नमय कोष नहीं रहेगा, प्राणमय कोष नहीं रहेगा, मनोमय कोष नहीं रहेगा। अब वो तो घबरा गया भाई, वेदांत की कभी सुना नहीं था वेदांत। तो महाराज ये अन्नमय कोष का अर्थ क्या? बोले ये जो स्थूल शरीर इसको अन्नमय कोष कहते हैं, वो स्थूल शरीर नहीं रहेगा। प्राणमय कोष का अर्थ क्या हुआ? वो बोले प्राणमय कोष का अर्थ होता है ये जो श्वास तुम ले रहे हो छोड़ रहे हो प्राण, और इसके जो पांच विभाग हैं, और इसके बाद जो कर्म इंद्रिय पांच, हाथ पांव, जो बोल रहे हो वाणी, पायु उपस्थ, ये सब प्राणमय कोष के अंग हैं। तुम्हें प्राणमय कोष की प्राप्ति नहीं होगी का मतलब होता तुम्हें हाथ की प्राप्ति नहीं होगी, पांव की प्राप्ति नहीं होगी। तब वो कहने लगे कि फिर पांव नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे, हाथ नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? ले जी उनके सामने तो बड़ी समस्या हो गई। पायु नहीं होगा तो फिर हम कैसे मल विसर्जन करेंगे, उपस्थ नहीं होगा तो मूत्र कैसे परित्याग करेंगे? उनको तो बहुत समस्या हो गई, घबरा गए वो तो। मनोमय विज्ञानमय कोष नहीं होगा तो मतलब आपका मन भी नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगी, आपके ज्ञान इंद्रिय नहीं होगे, आंख नहीं होगे, कान नहीं होगा सुनने के लिए, देखने के लिए आंख नहीं होगा, चखने के लिए जिह्वा नहीं होगी, सूंघने के लिए नाक नहीं होगा, स्पर्श त्वच इंद्रिय नहीं होगा, बुद्धि जानने के लिए बुद्धि नहीं रहेगी। बोले महाराज जानने के लिए बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर क्या कैसे करेंगे है? देखने के लिए आंख नहीं रहेगी, सुनने के लिए कान ही नहीं होगा। नहीं महाराज ऐसा पंचामृत हमको नहीं पीना है। पीना है आपको ऐसे पंचामृत? उसने तो कहा भाई तब तो फिर कल से हम ये पंचामृत नहीं पिएंगे महाराज है? हमको तो चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि दोबारे शरीर मिले, दोबारे आंख मिले, और अच्छा शरीर मिले, और अच्छे इंद्रियां मिले। देखो उनके सोच में और हमारे सोच में कितना अंतर है, उनके सोच में और हमारे सोच में कितना अंतर है। अरे जो शरीर अभी प्राप्त हुआ यही हमारे लिए इतना भारी हुआ है, और जो इंद्रियां हमें प्राप्त हुई है इन्हीं इंद्रियां हमारे लिए इतनी मुसीबत हो गई है, मुसीबत का कारण बन गए हैं, तो इससे अच्छा शरीर का क्या अर्थ हो गया, इससे अच्छे इंद्रियों का क्या अर्थ हुआ? क्या इससे अच्छे इंद्रियों का अर्थ, इससे अच्छे शरीर का अर्थ यही है कि ये शरीर तो 70-80-90-100 साल में खत्म, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, कर्म कमजोर हो जाएगा। अच्छा शरीर का मतलब यह क्या कि 10,000 वर्ष तक रहने वाला शरीर अच्छा शरीर? आप ऐसे शरीर चाहते हैं? बोले हाँ ऐसा हो तो बढ़िया है। लियो जी अच्छे इंद्रियों का अर्थ आप क्या चाहते हो? हमने उनसे कहा, यह संवाद चल रहा था, अच्छे इंद्रियों का अर्थ आप क्या चाहते हो? कि ज्यादा से ज्यादा विषयों को सेवन कर सके, ज्यादा से ज्यादा विषयों को जान सके, ज्यादा से ज्यादा विषयों को भोग सके, यह अभिप्राय है? अभी तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, आंख शिथिल हो गया, पहले कितना अच्छा देखते थे अब देखना ऑपरेशन करने के बाद चश्मा लगाने के बाद भी मुश्किल हो गया। अच्छा सा अच्छा इंद्रिय का अर्थ क्या चाहते हैं हम, यही सब। तो कब तक अच्छी बुद्धि का अर्थ आप क्या चाहते हो? एक बार देख लिया तो बस याद हो गया, एक बार सुन लिया तो याद हो गया, एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, यही अच्छी बुद्धि का लक्षण ना? कभी भी नहीं भूलना, यही अच्छी बुद्धि का लक्षण आप जान चाहते हो? बोले हां महाराज। कोई भी बात कभी भी ना भूलें, यही तो अच्छी बुद्धि का लक्षण है। हमेशा याद रहे हर चीज, तब तो ठीक है भाई, पिछले जन्म का भी याद हो जाए, ऐसी बुद्धि हम दे देंगे तुमको। है ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है, यही शिव पादोदकम पीतवा, ये शिव चरणोदक पिछले जन्म में पिया था और इस जन्म में भी तुमको मिल गई, इसलिए पिछले 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 जन्मों के सब विस्मृति हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, ये शिव पादोदक की खेल है ये। और यदि सारे जन्मों के अनेक योनियों की बात सब आ जाए तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। जिस समय तुम मनुष्य योनि में थे और तुम्हारे पिता मर के गधा बन गए, भगवान करे न बने, लेकिन हमारे कहने से तो होगा नहीं, और वो सामने आ जाए और तुम पहचान लो उसको पिताजी करके, क्या चरण वंदना करोगे? ये तो बड़ी अच्छी कृपा हुई है कि पूर्व पूर्व जन्म में कौन क्या था सब पर्दा डाल दिया। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, तुम्हें आवश्यक स्मृति भी मैं ही देता हूं, अनावश्यक स्मृति का अपोहन भी मैं ही कर देता हूं। स्मृति ज्ञान का अपोहन ये भी परमात्मा की कृपा है भाई। तो उनको समझ में नहीं आई वेदांत, इसलिए वह घबरा गए, और आप नहीं घबराओ क्योंकि आपको समझ में आ गई है। समझ में आने का मतलब यही है कि इनके प्रति आसक्ति नहीं होना, बस। अजो हे को जुष्माणो अनुसेते, ये समझ में नहीं आए हुए अज की बात है ये। और दूसरा क्या है, जहा तेना मुक्त भोगा मजो अन्य, जिसको ये बात समझ में आ गई उस अज की बात यह है। तीन प्रकार के अजन्मा हैं, एक प्रकृति माया अजन्मा है, दूसरे जीवात्मा बद्ध जीवात्मा अजन्मा है, तीसरा मुक्त जीवात्मा अर्थात ईश्वर परमात्मा वो भी अजन्मा है, और जो दूसरे नंबर का अजन्मा है जीव, उसको क्यों ये सारी समस्याएं होती हैं? इसलिए ये सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि वह इन सारे पदार्थों में आसक्त होता है। इसी बात को ये प्रसिद्ध दूसरी श्रुति है, सारे उपनिषद में ये श्रुति बहुत प्रतिष्ठित है और प्रसिद्ध है। द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन्यो अविचाकसी ही। श्रुति अनेक माध्यम से हमें उस तत्व को समझा रहे हैं। जैसे कोई मां अपने बच्चों को अनेक कहानियों के माध्यम से उस बच्चों को वस्तु का स्मरण कराते हैं, समझाते हैं, बोध कराते हैं, अलग अलग उपायों के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग रूपक के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसी तरह श्रुतियां, भगवान शंकराचार्य जी तो श्रुति को, उपनिषद के मंत्रों को इतना आदर देते हैं कि जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा आदर देते हैं। आपके सामने और शंकराचार्य जी के सामने या हम लोगों के सामने ये प्रस्ताव आ जाए, आपके सामने दो चीज हैं, एक तुम्हें जन्म देने वाली मां, दूसरे ये श्रुतियों की श्रुति माता यानी श्रुतियों के मंत्र, उपनिषद के मंत्र, ये दो चीज हैं। दो में से एक को छोड़ना है, एक को लेना है, दोनों को एक साथ रख नहीं सकते हो। एक का परित्याग करना है, सर्वथा परित्याग करना है, और एक को रखना है, ये कह दिया जाए तो आप किसका परित्याग करोगे और किसको रखोगे, बोलो साथ में है? जन्म देने वाली मां को परित्याग करके श्रुति को रखोगे साथ में, कि श्रुति का परित्याग करके जन्म देने वाली मां को रखोगे साथ में, बोलो है? नहीं, एक को रखना है, दोनों रखेंगे ये कंडीशन नहीं है, दो में से एक को रखना है, एक का चुनाव करना है तुम्हें। जन्म देने वाली मां को रखोगे साथ में, उसका कहना मानते जाओगे, कि श्रुति को साथ में रखकर उसका कहना मानते जाओगे, श्रुति का कहना उस वाक्य को, श्रुति के कथन को तुम महत्व दोगे कि जन्म देने वाली मां के कथन को महत्व दोगे। ये दो विकल्प यदि आपके सामने रखा जाए, दो में से एक को तुमने चुनना होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत से व्यक्ति जन्म देने वाले मां को साथ में रखेंगे, उसके कहना मानने को तैयार हो जाएंगे, श्रुति का भले ही परित्याग कर देंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे। आज तक यही होता ही आया है और हो ही रहा है और आगे भी होगा। क्यों? क्योंकि इस महत्व को, इस रहस्य को नहीं समझते। लेकिन हमारे सामने जब बात आएगी तो है? हमारे सामने जब बात आएगी, दो में से एक को साथ में रखना होगा, एक का कहना मानना होगा, तो फिर हम क्या करते हैं? श्रुति को हम आदर देकर श्रुति के साथ में हम रहेंगे और श्रुति के कहे हुए को हम मानेंगे, जन्म देने वाली मां के कहे हुए को हम नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? अरे भाई, आज तक तो जन्म देने वाली मां ने तो यही कहा, तुझे मैंने पैदा किया, मैंने तेरे को बड़ा किया, आप बेटा ये वंश चलाने के लिए तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी, आप बेटा शादी करके फिर बच्चे भी दो चार पैदा करना पड़ेगा, कुटुंब चलाना है, संसार चलाना है, वंश चलानी है। इससे उपलब्धि क्या हुई भाई है? इससे उपलब्धि क्या हुई? आपके बंधन की मुक्ति के लिए उसने किया क्या? वो तो घुमा फिराकर आप तो खुद फंसी हुई है, साथ में आपको भी फंसा रही है। एक ही मां हुई है, वो शायद साक्षात श्रुति का ही रूप लेकर प्रकट हुई होगी, इसलिए उसने ये बात कही है कि जो जन्म देते हुए भी उसने श्रुति का काम किया, नहीं तो मुझे लगता है कि इतिहास में और कोई जन्म देने वाली मां ने श्रुति का काम किया होगा जैसा तो मुझे नहीं लगता है। वो थी मदालसा, वो साक्षात श्रुति की मूर्ति है। वो शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी संसार माया परिवर्जितोशी संसार स्वप्नम तिदमोह निद्राम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तो तुमको जन्म दे सकी हूं, जन्म दिया है, लेकिन इतना ही मेरा कर्तव्य नहीं, यदि मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा मुक्त करना, तुम्हें मुक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। संसार में कितनी जन्म देने वाली मां है जो जन्म देने के बाद अपने पुत्र की मुक्ति के लिए प्रयत्न करती है, लेकिन श्रुति वेद के मंत्र ये भले ही तुम्हें जन्म न दे सकते हो, लेकिन जो जन्म के कारण जो तुम्हारे कष्ट और समस्याएं आ गई हैं, बार बार के जो दुख विषाद और कष्ट है, ये सब से मुक्ति करने के लिए, मुक्त करने के लिए श्रुति उपदेश करती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधता चुरस्य धारा निषित दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। प्रमादो वही मृत्युमहम ब्रवीमि सदा प्रमादाद अमृतत्व ब्रवीमि स्वाध्याय मां प्रमदितव्य। श्रुति कह रही है, बेटा स्वाध्याय में तुम प्रमाद नहीं करना, संसार के बारे में तुम प्रमाद कर लो तो चल जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के बारे में प्रमाद नहीं करना। इस तरह बार बार श्रुति समझाती है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जन्म देने वाली जो मां है वो तो जन्म देकर मोह में फंसाती है, मुक्ति के लिए वह कोई प्रयत्न नहीं करती। श्रुति तो ऐसी वात्सल्यमयी मां है जो जन्म देने वाले मां से भी 100 गुना ज्यादा हमारे हित की बात करती है, इसलिए हम तो श्रुति का कहना मानेंगे। ये श्रुतियां बहुत प्रसिद्ध है। द्वौ सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिस्वत्स जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्न नन्यो अविचाक सीति। जीव जगत और परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए श्रुति बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।